नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले आज दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुग्राम के शिकोहपुर भूमि सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने त्वरित शिकायत निवारण के लिए आज अपने कन्वेंशन सेंटर में एक सुविधा शिविर का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार निर्माण और उनकी आपूर्ति करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। और मेघालय अनानास महोत्सव 2025 दिल्ली हाट INA में जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा सत्र से पहले आज दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
श्रीमती रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस सत्र होगा, जो दिल्ली विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन उनकी सरकार की तकनीक आधारित पारदर्शिता और दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक भी चर्चा के लिए पटल पर रखा जाएगा, जो दिल्ली के शिक्षा तंत्र को अधिक सुदृढ़ और समावेशी बनाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा।
बहुत खुशी है मुझे, आज माननीय विधायकों के साथ बैठ करके पूरी चर्चा की गई और दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में एजुकेशन बिल लेके आया जाएगा, जो कि चर्चा के लिए पूरी तरह से पटल पे रखा जाएगा।
सकलीन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
दिल्ली सचिवालय द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद ये तीसरा सत्र होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का एक ट्रायल रन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी विधायक डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुग्राम के शिकोहपुर भूमि सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है। एक रिपोर्ट।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और रॉबर्ट वाड्रा समेत कुल 11 लोगों को नोटिस जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने शिकोहपुर गांव में कथित धोखाधड़ी से लगभग 3.5 एकड़ भूमि की कथित खरीद से जुड़े एक मामले में वाड्रा और 10 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। निदेशालय जाँच के आधार पर पहले ही रॉबर्ट वाड्रा और उनकी एक कंपनी से जुड़ी 43 संपत्ति को कुर्क कर चुका है, जिनकी कुल कीमत 37,34,00,000 रुपए है। प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मनोज।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, विचार और संकल्प शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री ने आज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के 39वें स्थापना दिवस समारोह और नए छात्रों के स्वागत कार्यक्रम में विद्यार्थियों से अपील की कि वह अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें।
मैं आप सभी फ्रेशर को विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये मानिए कि ये जो 3-4 साल आपके हैं कॉलेज के, ये गोल्डन पीरियड है। सीख लीजिए जितना सीख सकते हैं, भर लीजिए अपनी झोली, दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। ये फेज निकल जाएगा तो उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने शहर के सुल्तानपुर स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैट साइट A3 का निरीक्षण किया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2011 से तैयार इन फ्लैट्स को कई अरब रुपए की लागत से झुग्गीवासियों के लिए बनाया गया था, लेकिन पूर्व सरकारों की उदासीनता और दुर्भावनापूर्ण नीतियों के कारण ये फ्लैट्स वर्षों तक वीरान पड़े रहे।
2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब बिना सुविधाओं के रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे।
दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह आज दिल्ली सरकार के स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आह्वान पे इस अभियान में सभी मंत्री, विधायक, पार्षद और सरकार के सभी विभाग हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने की दिशा में सरकार तत्परता से कार्य कर रही है।
सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट, सारे हमारे डीएम, सारे एसडीएम, सारे डीसी ये इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम अपने अपने विभागों में कैसे दिल्ली को सुंदर बना सके। उसी दिशा में आज हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में यहाँ पर आके फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे सफाई अभियान को सांकेतिक रूप में किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे एरिया की अच्छे से साफ सफाई हो, इसकी सुंदरता को हम लोग बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है।
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज शहर के रोहिणी सेक्टर 24 में जन सुनवाई के दौरान लोगों और जनप्रतिनिधियों से दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सभी वार्डों की जेजे कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों, विद्यालयों, कॉलेजों और अस्पतालों में लोगों को स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित और जागरूक करने के लिए भी कहा। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने शहर के साकेत इलाके में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में श्री बिदुड़ी ने कहा कि अब दिल्ली में जन स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है।
लगभग 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। अगले कुछ दिनों में लगभग सभी 1200 आरोग्य मंदिर श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में खोल दिए जाएंगे, जिससे कि दिल्ली के लोगों को इसका लाभ मिल सके।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने त्वरित शिकायत निवारण के लिए आज अपने कन्वेंशन सेंटर में एक सुविधा शिविर का आयोजन किया। परिषद ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य NDMC क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के निवारण और सुविधा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। परिषद ने बताया कि शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित 45 जन शिकायतों पर सुनवाई की गई। शिविर में 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध हथियार निर्माण और उनकी आपूर्ति करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में राजस्थान के भरतपुर में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अत्याधुनिक देसी हथियारों के उत्पादन और वितरण में शामिल थे। इस दौरान 18 देसी पिस्तौल, राइफल और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न औजारों सहित भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की दक्षिण पूर्वी जिले के टीम ने आज मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान गोविंदपुरी इलाके से 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। पुलिस के अनुसार इन आरोपियों से लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। इसके अलावा आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 10,000 रुपए से अधिक नकद और अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मेघालय अनानास महोत्सव 2025 दिल्ली हाट INA में जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 दिवसीय इस महोत्सव में राज्य के 100 से अधिक किसान और विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयां भाग ले रही हैं।
दिल्ली में चल रहे मेघालय अनानास महोत्सव का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस मेले में आगंतुक मेघालय के अनोखे स्वाद का लुत्फ उठा रहे हैं। इस महोत्सव में अनानास से बने विशेष व्यंजन, परंपरागत रेसिपी और कुकीज को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। लोगों को मेघालय थाली में पाइनएप्पल डिमसम, पाइनएप्पल टिक्का, पाइनएप्पल स्टिक और पाइनएप्पल फ्राइड राइस भी काफी आकर्षित कर रहे हैं। महोत्सव में एक विशाल अनानास की आकृति का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां तस्वीर लेने के लिए लोगों में होड़ भी देखने को मिली। इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों को ग्राहकों से सीधे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में आगंतुक सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक जा सकते हैं। कल मेघालय अनानास महोत्सव का अंतिम दिन है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 16 अगस्त से 14 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है।
राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जिसमें अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे तक होगा। उद्यान रखरखाव के लिए सोमवार को बंद रहेगा। आगंतुक ऑनलाइन माध्यम से visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों तथा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर अमृत उद्यान में विशेष प्रवेश मिलेगा। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में मातृ वन पहल का शुभारंभ किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि यह पहल अरावली पर्वतीय क्षेत्र में 750 एकड़ में फैली थीम आधारित शहरी वन है।
इस अवसर पर श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मातृ वन का हरित आवरण पूरे दिल्ली NCR के लिए हृदय और फेफड़ों का काम करेगा।
हमें ऐसी जगह की आवश्यकता थी जो केवल गुड़गांवा नहीं पूरे NCR क्षेत्र की जनसंख्या के लिए एक हार्ट का काम कर सके, एक ग्रीन कवर का काम कर सके, जो हमारे लोगों को शांति दे सके, बच्चों को खुशी दे सके।
श्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर कहा कि गुरुग्राम जैसे महानगरों को हरित भवन, वन्यजीव सफारी के माध्यम से पर्यावरण पर्यटन और थीम आधारित जैव विविधता पार्क जैसी अग्रणी पहलों से दूसरों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए।
बिल्डिंग कोड जैसे बनाओ, बिल्डिंग कोड में भी एक पिछले दिनों में चर्चा आई कि ग्रीन बिल्डिंग्स बनाओ। ग्रीन बिल्डिंग का अर्थ यह है कि छत को जो है छत के ऊपर भी आप 1 फुट की मिट्टी चढ़ा दो और वहाँ छोटे छोटे पेड़ जो 1 फुट मिट्टी में उग सकते हैं वहाँ लगाओ और उसका पानी जितना बरसता है वहीं रोक के रखो। और आज विषय आया कि गुरुग्राम को हम पर्यटन के नाते भी अच्छा स्थान बनाएं।
मातृवन प्रकृति से प्रेरित हरित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों के पोषण के लिए थीम आधारित शहरी वन समर्पित पहल है। इसकी परिकल्पना एक अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और सांस्कृतिक स्थान के रूप में की गई है, जो जैव विविधता, सार्वजनिक कल्याण और शहरी संधारणीयता में योगदान के लिए है। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि पिछले वर्ष देश ने लगभग 18,900 प्रत्यारोपण करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह किसी एक वर्ष में सर्वाधिक है। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली में 15वें अंगदान दिवस को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि 2023 में 3 लाख से अधिक नागरिकों ने राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के माध्यम से अंगदान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंग प्रत्यारोपण में भारत विश्व स्तर पर 3रे स्थान पर है।
इंडिया अचीव्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन इन 2024 परफॉर्मिंग ओवर 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड इन अ सिंगल ईयर। This is a significant leap from fewer than the 5,000 transplants in 2013. India now proudly ranks 3rd globally in total number of organ transplants.
उन्होंने राजधानी के ज्यादातर इलाकों में आज मौसम साफ रहा, हालांकि कुछ इलाकों में बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार से शुरू हो रही विधानसभा सत्र से पहले आज दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुग्राम के शिकोपुर भूमि सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने त्वरित शिकायत निवारण के लिए आज अपने कन्वेंशन सेंटर में एक सुविधा शिविर का आयोजन किया और मेघालय अनानास महोत्सव 2025 दिल्ली हाट INA में जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।